माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल देव मिश्रवाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोदशतीश डिवाइन गेज भक्ति सिद्धांत भक्तिवेदांत स्वामी श्री रूपाद की जय जय ओम इष्टवाद परमहंस प्रज्वजगाचार्य अष्टदर्शधीश डिवाइन गेज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारका धाम की जय। तुल गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। नरोत्तम दास शिरोभाव महामहोत्सव की जय। ऑल गुरिष्ठो शमल्यवरी हरे कृष्ण। ऑल गुरिष्ठो शमल्यवरी हरे कृष्ण। ऑल गुरिष्ठो शमल्यवरी हरे कृष्ण। ऑल गुरिज ऑल गुरिज ऑल गुरिष्ठ श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में मैं कुछ उनके जीवन के ऊपर उनकी लीलाओं का कुछ कथन करने की चेष्टा करूँगा। सो जो नरोत्तम दास ठाकुर जो है, उनको गौड़िया वैष्णव के जो सिद्धांत है, उनका जो सिद्धांत है, तो उनका एक अवतार माना जाता है कि उन्होंने जिस तरह से अपने जो गीत है वैष्णव गीत है उसमें से जिस तरह गौड़िया वैष्णव के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, तो उनको एक उनका अवतार माना जाता है। तो श्री प्रभुपाद उनके एक परपोट में लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंदर 10वां अध्याय और 20वें श्लोक के परपोट में उनका जो है उसमें लिखते हैं कि जो श्री नरोत्तम दास जी ठाकुर जो है उनके जो भजन है वो वैदिक मंत्रा की तरह है, जो वेदास के जो मंत्रा है, जो श्लोकाज है उसके तरह है। तो उनका एक बहुत ऊंचा स्थान है गौड़िया वैष्णव के जो इतिहास है उसके अंदर बहुत ही ऊंचा स्थान है। तो हम शुरुआत करेंगे कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर इनका वो इतने महान है वैष्णव थे कि उनका आविर्भाव का जो पूर्व कथन है उसकी भविष्यवाणी है वो खुद चैतन्य महाप्रभु ने किया उनका आविर्भाव होने से पहले। तो एक बार की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो तभी जब खेतुरी के पास से जो जा रहे थे, तो वो पद्मा रिवर जो नदी है उसके दूसरे साइड पे पश्चिम साइड पे संकीर्तन कर रहे थे उनके सब पार्षदों के साथ, और संकीर्तन जोर जोर से चालू था, सब लोग संकीर्तन में मग्न थे और गौरांग महाप्रभु उनका पूरा आवेश में थे, जोर जोर से नृत्य कर रहे थे और ऊंचे उछल के नृत्य कर रहे थे। और अचानक वो पूरा ऐसे ज़मीन से बहुत ऊंचे छलांग लगाते हैं और नीचे गिरते हैं, पूरा धूल ऐसा उड़ता है पूरा, और अचानक से वो स्तब्ध हो जाते हैं और जो पद्मा नदी है उसकी तरफ देखने लगते हैं, वो पानी में देखने लगते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं नरोत्तम नरोत्तम। तो सब लोग सब जो भक्त है उनको लगता है कि क्या हो गया, और नरोत्तम नरोत्तम बोलते हैं और एकदम जोर से रोने लगते हैं, उनके आंखों से जो अश्रु की धाराएं बहने लगती है जोर जोर से। तो सब अचंभित हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया, और वो गिर जाते हैं नीचे ज़मीन पर। तो ऐसा दृश्य जो है वो कभी आज तक किसी ने देखा नहीं था कि इतने भाव विवर होके चैतन्य महाप्रभु कैसे गिर गए, और ऐसे इतना कभी आज तक किसने देखा नहीं था कि इतना कभी वो रोए नहीं। तो सब लोग जिस तरह उनको पुनः उनकी मानसिक स्थिति में लाने के लिए वो सब कीर्तन करने लगे, लेकिन वो वैसे ही अवस्था में थे। तब नित्यानंद प्रभु उनके कान के पास जाते हैं और उनके उनके पास जाके उनके कान में कीर्तन करने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं। तो अचानक से वो नित्यानंद प्रभु के गले में ऐसे हाथ डालते हैं और बोलते हैं कि अभी हम कुछ समय के पश्चात हम जब धरात से हमारा जब हम यहाँ से चले जाएंगे वापस धाम में, तो जो भगवान का जो जो लव ऑफ गॉड है जिसको हम बोलते हैं कि प्रेम है, शुद्ध भक्ति जो है, इसको हम मैं विरासत में किसको दूंगा, कौन इसका आगे जाके प्रचार करेगा। तो नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं कि आप तो स्वयं भगवान हैं, ये सब आपको पता है, आप मुझे कैसे पूछ रहे हैं, कि आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। तो बोलते कि जो भगवत भक्ति है, जो कृष्ण प्रेम है, जो हम इतना बांट रहे हैं, तो हमारे जाने के बाद इसका प्रचार होना चाहिए, पूरा दुनिया में प्रचार होना चाहिए। तभी वो बोलते कि नरोत्तम इसका प्रचार करेगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि नरोत्तम ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये कौन है नरोत्तम? तो तभी महाप्रभु बोलते हैं कि अभी तक उनका आविर्भाव हुआ नहीं है, वो अभी कुछ समय पश्चात उनका खेतुरी जो ग्राम है, जो गांव है, उधर उनका आविर्भाव होगा, जो पद्मा रिवर के उस तरफ है, मतलब इस पूर्व दिशा में है, उधर उनका आविर्भाव होगा। तो फिर वो महाप्रभु उठ जाते हैं और फिर कीर्तन पुनः चालू हो जाता है। और फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि मैं जो मेरा जो प्रेम है वो पद्मा रिवर के जो नदी है उसके अंदर मैं उसको रख के जाऊंगा, और जब नरोत्तम आएंगे तब इस नदी ये जो फिर से उनको वो जो भगवान का जो प्रेम है वो उनको प्रदान किया जाएगा वो नदी में से। तो फिर वो जाते हैं, फिर दूसरे दिन पुनः उस नदी के पास आते हैं संकीर्तन करते वक्त। फिर नित्यानंद प्रभु संकीर्तन को रोकते हैं, बोले अभी सब शांत हो जाइए। फिर चैतन्य महाप्रभु नदी में उतरते हैं। जैसे ही वो नदी में उतरते हैं तो अचानक से नदी में खलबली मच जाती है, पूरे जो उसके अंदर जो लहरें उठने लगती है और पानी पूरा बाहर तक आने लगता है, और अंदर से एक सुंदर देवी प्रकट होती है, पूरा रेशमी वस्त्र पहने हुए एक सुंदर देवी प्रकट होती है, वो खुद स्वयं पद्मा नदी रहती है। तभी वो चैतन्य महाप्रभु को हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भगवान बोलिए मेरे लिए क्या सेवा है। तो वो बताते हैं कि मैं मेरा जो प्रेम है, जो अगाध प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए, उसको मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख के जाऊंगा, और नरोत्तम नाम के एक व्यक्ति आएंगे, उनको आपको सौंपना है। तभी वो पद्मा देवी पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन नरोत्तम है? तो वो बोलते हैं कि जिस प्रकार मैं नदी में आने के बाद जिस तरह खलबली मची है, पानी पूरा उभरने लगा है, उसी प्रकार ये पानी उभरने लगेगा जब वो नरोत्तम इस नदी में आएंगे और एक सांवले कलर के युवावस्था के एक व्यक्ति रहेंगे, तब आप उनको ये दे देना। तब नदी बोलती है कि पद्मा नदी बोलते हैं कि अगर उनके पास इतना प्रेम है कि उसके वजह से जब अभी जैसे स्थिति हो गई मेरी वैसे हो जाएगी, तो आपका अगर प्रेम उनको और मिल जाएगा तो उनका क्या स्थिति हो जाएगा, क्या वो आपका प्रेम संभाल पाएंगे? तभी वो बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, वो सब मतलब वो सक्षम रहेंगे, आपका मेरा जो प्रेम है वो संभाल पाएंगे। तो फिर उसके बाद उनका कीर्तन जो पार्टी है वो आगे जाते हैं। फिर एक जो खेतुरी जो गांव में है उधर जो राजा है उनके उनका नाम रहता है कृष्णानंद दत्त, किंग कृष्णानंद, राजा कृष्णानंद दत्त, और उनकी जो पत्नी रहती है उनका नाम रहता है नारायणी। तो उनको कोई भी संतान नहीं रहती, तो वो बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहते कि हमें पुत्र होना चाहिए ताकि जो राज्य है हमारा कोई देख सके, इसका जो इसको संभाल सके, क्योंकि उनका जो राज्य रहता है वो पूरा एकदम बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने उसका केयर किया, अच्छे से संभाला रहता है, बहुत ही अच्छे से फला फूला राज्य रहता है उनका, बहुत सब कुछ रहता है, कुछ भी इसमें कमी नहीं रहती है, सब लोग कोई गरीब नहीं रहता है। तो फिर एक दिन वो ऐसे बैठे रहते हैं उनके एक उनके जो कार्यालय है उसमें बैठे रहते हैं, तो अचानक से उनको आवाज़ सुनाई देता है कि जल्दी ही आपके घर में नरोत्तम नाम का एक पुत्र है वो होगा। और वो अचानक से इधर उधर देखने लगते हैं कि उनको कोई दिखता नहीं कौन बात कर रहा है, वो अचंभित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। तो उनको लगता है ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तो वो बोलते मैं तो जगा हूँ, सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर एक क्या भविष्यवाणी कैसे कहाँ से आई? तो फिर उन्होंने उनको लगा कि शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और ऐसा शायद चमत्कार हो सकता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद नारायणी उनकी जो पत्नी है वो उनके पास आती है और उनको बोलती है कि मैंने कल कल जो है रात को एक सपना देखा, उसमें मैंने देखा कि आपके शरीर में से एक दिव्य पुरुष निकल के मेरे शरीर में आ गया है और मेरे शरीर में आकर समा गया है। तभी वो उनको लगता है कि जो मैंने सुना था वो शायद इससे कुछ रहेगा, इसके बारे में उनको लगता है कि शंका होती है कि शायद इससे कुछ रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा। तो जैसे ही वो फिर सुनते हैं, फिर कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद एक जो व्यक्ति आते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य बताते हैं, तो उन आते हैं, उनको वो बिठाते हैं, अच्छे से उनका सत्कार करते हैं, जो कृष्णानंद दत्त है, और फिर उनको वो पूरा चार्ट लगाते हैं उनका पूरा, और बोलते स्मित होकर बोलते कि बहुत ही जल्दी आपके घर में एक पुत्र आने वाला है, वो पुत्र बहुत ही भगवान का बड़ा भक्त रहेगा, और पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया का जो दुख है उसको वो मिटा सकेगा, इतनी उसके अंदर कार्यक्षमता रहेगी। और फिर वो जो है चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद नारायणी जो है वो गर्भवती हो जाती है, और उसके बाद जो माघ महीने में, मतलब जैन और फेब का जो महीना रहता है, उसके में पूर्णिमा के दिन सुबह 6 बजे एक बच्चे का जन्म होता है उनके घर में। और जब जन्म होता है तो वो जो रूम जिधर जन्म होता है वो एकदम ऐसा एक वातावरण बन जाता है, ऐसा एक प्रफुल्लित हो जाता है रूम कि किसी ने देखा नहीं रहता है, कि उसको बोलते हैं कि ये दुनिया का नहीं है, वो बाहर से किधर का है। और फिर अचानक सबको फिर एक सूचना मिल जाती है, उनके जो पति है उनको भी सूचना मिल जाती है कि जन्म हुआ है, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, सब जगह पे बताया जाता है। और फिर अचानक जो नारायणी देवी है, जो उनकी वाइफ है, उनको दिखता है कि एक सुनहरे कलर के जो एक व्यक्ति है, और एक एकदम गोरे व्यक्ति जो नीले वस्त्रों में है आए हैं, और पूरे घर में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो खुद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु रहते हैं, और सब वो इधर उधर देखने लगती है, तो किसी को भी वो दृश्य जो है वो दिखता नहीं, ऐसे उनको ही दिख सकता है उस जो दृश्य है। तो और फिर अचानक वो देखते तो वो अदृश्य हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो भगवान का चमत्कार है, खुद भगवान ने ये पुत्र को दिया है। फिर उसके बाद वो बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत सारे गिफ्ट दिया जाता है बहुत सारे लोगों को। फिर अभी हम उनके बारे में थोड़ा, नरोत्तम दास ठाकुर जी का बालपन के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो एक बार वो कृष्णानंदा और उनके जो भाई है वो बैठे रहते हैं, पुरुषोत्तम दत्त उनका नाम रहता है, और वो चर्चा करते हैं कि अभी रथ यात्रा आने वाला है, तो रथ यात्रा के जो जो पिलग्रिम्स मतलब जो यात्रा में आते हैं लोग, वो हमारे गांव से गुजरेंगे, तो उनके रहने का खाने का सब इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा, तो हम उसका इंतज़ाम करेंगे। तो फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद सब जो आने लगते हैं, तब तक ये जो नरोत्तम जो है वो बड़े हो जाते हैं, थोड़े 5-6 साल के हो जाते हैं। तो उसके बाद वो देखते हैं कि बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत खुश है, सब चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन वो बोलते हैं कि उनके जो गार्ड रहते हैं घर में, जो उनका उनको संभालने वाले जो व्यक्ति रहते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे भी जाना है, जो लोग जो बात कर रहे हैं उनसे मिलना है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जगन्नाथपुरी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो मुझे सब जानना है। तो वो जाते हैं, और फिर देखते हैं कि सब लोग बहुत खुश है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अचानक से देखते हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति है, वो कथा कर रहे हैं, उनका नाम रहता है कृष्णदास जी, बाबा जी। तो फिर वो उनके वो जिनके साथ वो आए रहते हैं उनके जो घर से, उनको पूछते हैं कौन है, तो बताते हैं कृष्णदास बाबा जी है, और ये चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, और अभी ये खेतुरी में रहते हैं। तो फिर उनके साथ जाते हैं और कथा सुनते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते रहते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए बहुत। तो वो बोलते हैं कि बताइए और बताइए, मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। तो वो कृष्णदास बाबा जी, इतना छोटे बच्चा इतना सुन रहा है, तो उनको भी अच्छा लगता है, तो वो बताने लगते हैं। तो वो बताने लगते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का नारियाए में जन्म हुआ, फिर लोगों को लगता था कि ये एक मनुष्य है, लेकिन वो स्वयं भगवान है। और फिर तभी वो बोलते हैं नरोत्तम दास कि बताइए कि कैसे अभी वो नारिया में है या जगन्नाथपुरी में है। तो अचानक से वो चुप हो जाते, जो जो संत है वो चुप हो जाते, वो बोलते हैं कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उनका वो अपने धाम चले गए। तो जैसे जैसे वो सुनते हैं तो एकदम से वो अचम विस्मित हो जाते, एकदम उनको बहुत दुख होता है, नरोत्तम दास जी को बहुत दुख होता है, उनकी आंखें ऐसा मुंह खुल जाता है, ऐसा आंखें एकदम देखने लगते हैं कि तो मतलब वो बोलते कि मैं इतना सुनता था उनके बारे में, सब लोग आते थे बताते थे, तो अगर मैं थोड़ा पहले मेरा जन्म हो जाता तो मैं उनके जो लीलाएं हैं उनका मैं आस्वादन कर पाता, ऐसा उनको लगता है। तो लेकिन फिर कृष्णदास जी बोलते हैं उनको कि आप दुख मत कीजिए, क्योंकि भगवान जो है उनके भक्त के हृदय में रहते हैं, और उनकी जब इच्छा होती है तब वो उनके सामने प्रकट हो सकते हैं जब उनकी इच्छा से। तो मैं उनके जन्म के बाद एक उनके जो बताना भूल गया वो मैं बताना चाहूँगा कि वो जन्म के बाद उनका नामकरण करने के लिए कुछ जो ज्योतिषी है उनको बुलाते हैं, तभी वो सब अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग चार्ट निकालते हैं और बताते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली लड़का है, बहुत कुछ बताते हैं, भगवान के भक्त रहेंगे। और इनका जो नाम है, इनके नाम में न र और त तो, ये तीन अक्षर आने चाहिए, तो इनका नाम नरोत्तम हो सक रखना चाहिए, तभी उनको लगता है कि जो मैंने आकाशवाणी सुनी थी वो सही है, तो इनका नाम नरोत्तम रखा जाता है। लेकिन एक जो ज्योतिषी है वो बोलते हैं कि आप इनको जो पद्मा नदी है उससे दूर रखिए, क्योंकि वो नदी में उनको खतरा है, तो आप उनको नदी में कभी जाने मत देना। तो वो बहुत उसके लिए बहुत ही वो जो उनके पिताजी है वो गार्ड रखते हैं कि उनको कभी नदी में जाने नहीं देना चाहिए। और वो नरोत्तम को बोलते हैं कि आपके लिए मैं घर के अंदर ही बड़ा एक तालाब बना दूंगा, आप नदी में कभी जाने का नहीं। तो इस तरह उनका केयर करते हैं। और जब अन्नप्राशन उनका जब रहता है, जब वो 6 महीने के होते हैं, उस दौरान उनको जब कुछ खाने के लिए दिया जाता है तो वो बिल्कुल खाते नहीं हैं, मुंह बंद रखते हैं। सब लोग अचंभित होते हैं कि क्यों नहीं खा रहे। तभी एक ब्राह्मण बोलते कि आपने इसका भोग लगाया क्या? तो वो बोलते कि जल्दी जल्दी में हम भोग लगाना भूल गए, तो बोले पहले भोग लगाइए। तो वह भोग लगा के लाते हैं तब वो खाते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि जन्म से ही ये सिर्फ प्रसाद तो ही खा रहे हैं। तो तभी वो उनके पिताजी बोलते हैं कि इनको सिर्फ हमेशा प्रसाद ही दिया जाए, कभी जब तक भगवान को भूख नहीं लगाया जाए तब तक उनको कुछ दिया ना जाए। तो फिर जो फिर अब वापस हम जो चर्चा कर रहे थे उधर आते हैं, तो जो कृष्णदास बाबा जी हैं वो बोलते हैं कि अभी बहुत समय हो गया, आप घर जाइए, मैं आपके घर पे आके आपको कथा सुनाऊंगा। फिर वो कथा सुनाते हैं, घर में दूसरे दिन आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताते हैं कि किस तरह वो बहुत बड़े अमीर घर के थे, उनका जो पिताजी का जो जो कमाई थी वो महीने का 2 लाख का जो सोने के सिक्के, उनको महीने में 2 लाख सोने के सिक्के मिलते थे। आप सोचिए कि 500 साल पहले महीने में 2 लाख सोने के सिक्के कितना होगा, मतलब वो बिलियनर रहेंगे उस टाइम समय। तो वैसा है बताते हैं, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को, उनका उनको चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने का इच्छा होता है। और फिर जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वो सिम्मा द्वार में जाके मांग के खाते हैं, भिक्षा मांग के। फिर उनको वो लगता है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर वो जो बचा हुआ प्रसाद रहता है जगन्नाथ जी का खराब हुआ हुआ, जो गाय खाती है और गाय भी थूक देती है, तो उसको लेके धोके खाते थे। तो इसके बारे में बताते हैं, तो वे बहुत अच्छे से सुनते हैं। और फिर जब कथा होने के बाद जब वो उनके महल में जाते हैं, तो उनको फिर एक चांदी के वाटे में एक स्वीट राइस खीर ला के देते हैं। तभी वो बोलते हैं उनके माता पिता को कि नरोत्तम रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत ही सिंपल सादा खाते थे, तो हम इतना अच्छा क्यों खाएंगे, हम नहीं खाएंगे इतना अच्छा, हम भी सादा खाएंगे। तो तभी वो हंसने लगते कि इतना छोटा बच्चा है ऐसी कैसे बात कर रहा है, जैसे हम देखते हैं कि बच्चा को जैसे बात करते हैं तो हम हंसने लगते हैं। तो बोलते कि ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं उनके पिताजी बोलते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े संत है, हम उनके बारे में सब सुन सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं, हम उनके जैसा बन नहीं सकते। तो बोलते नहीं, हम भी घर छोड़ के जाएंगे और धर्मशाला में रहेंगे। तो बोलते ऐसा नहीं, बोलते हम यहाँ के राजा है, हमें आगे जाके इधर या प्रजा है उनको देखभाल करना है प्रजा का, तो हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो वो तभी वो बोलते कि ठीक है आपकी इच्छा नहीं तो मत जाइए, लेकिन मैं तो जाऊँगा, ऐसा वो बोलते हैं। तो उनको लगता है कि ऐसे मजाक में बोल रहा है बेटा, तो वो हंसी मजाक में टाल देते हैं। फिर उसके बाद जो उसके बाद वो उनका पढ़ाई चालू होता है, घर में आके उनको पढ़ाते हैं, संस्कृत सिखाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ही पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं। तो उनके जो टीचर है वो भी एकदम उनसे खुश रहते हैं कि इतना अच्छे से वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक दिन
जो नारायणी आती है, जो उनकी मदर है, और कृष्णानंद दत्त उनके फादर है, उनके पास आके बोलती है कि अभी ये पढ़ाई हो रहा है, इतना साल हो गया, लेकिन उनका कुछ जो नरोत्तम है उसका कुछ बाकी काम काज में कुछ ध्यान नहीं है, वो इससे पूरा अलग है, अलिप्त है। तो हमें कुछ सोचना चाहिए, सिर्फ कृष्णदास बाबा जी की कथा सुनता रहता है और पूजा करता रहता है, बाकी चीज़ों में इसको कुछ ध्यान नहीं है। तो उनके पिताजी बोलते हैं आप सही बोल रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसा करते हैं उसकी शादी कर देते हैं, जब शादी कर देंगे तो उसके ऊपर कुछ जवाबदारी आ जिम्मेदारी आ जाएगी, तो वो अपने आप ये सब चीज़ों से विरक्त हो जाएंगे। वो बोलते हैं कि भक्ति करनी चाहिए लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए। तो फिर उस दिन जब रात को जो नरोत्तम दास जब सोते हैं, तो उनके सपने में नित्यानंद प्रभु आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप तुरंत पद्मा नदी में जाइए और उधर जाके डुबकी लगाइए। तो अचानक से उठते हैं, और लेकिन उनके पूरा आजू बाजू में गार्ड्स रहते हैं, तो वो सीढ़ी स्टूल या सीढ़ी कुछ लगा के कुछ दूसरे रास्ते से ऐसा छलांग लगा के चुपचाप निकल जाते हैं, और भगवान का नाम जप करते, कृष्णा का नाम जप करते करते नदी की तरफ जाते हैं। तभी पूरा अंधेरा रहता है, सुबह का पूरा सूरज निकला नहीं रहता है, तो उस टाइम वो जाते हैं, कोई उनको देख नहीं पाता, और फिर वो नाम लेते लेते पद्मा नदी में जाते हैं। और जैसे ही वो नदी के अंदर जाते हैं, तो अचानक से सब लहरें उठने लगती है, पानी बाहर जाने लगता है ज़मीन की तरफ, और अचानक उनके सामने वही पद्मा जो नदी है, उनकी जो देवी है, वो प्रकट होती है। तो वो देख के विस्मित हो जाते हैं कि कौन है। तो वो उनको बताते हैं नरोत्तम दास जी को कि ये जो मेरे पास आपके लिए एक धरोहर रखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने, तो वो धरोहर मुझे आपको देना है। और सामने वो हाथ करके उनको एक सुवर्ण कमल का पुष्प देती है, और वो अचानक से उधर से अदृश्य हो जाती है। और जो कमल का जो ये है, अचानक से एक सुवर्ण बालक के अंदर उसका रूपांतरित होता है, और वो नरोत्तम दास जी के पूरे शरीर में, उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। और जैसे उनके हृदय में बालक प्रवेश करता है, जो खुद चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, तो उनको एकदम से उनको समझता नहीं क्या हो रहा है, अचानक से कंपन होने लगता है शरीर में, अश्रु निकलने लगते हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं रहा है उनको, वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहते। तो अचानक फिर कैसे तो नदी के बाहर आते हैं, लेकिन वो उछलते हैं, गिरते हैं, रोने लगते हैं, उनको समझता नहीं और मूर्छित हो जाते हैं। और फिर उनको आवाज़ आता है, नरू नरू करके बुलाते हैं, तो उनको देखते हैं कि उनके पिताजी उनको बुला रहे हैं। तो आँख खुलते हैं तो सब गाँव वाले उधर आए हैं, उनको देख रहे, तो बोलते पिताजी उनकी जो बोलते कि आपके रूम में नहीं थे तो हम एकदम डर गए, तो बिना बताए इधर कैसे आ गए, क्या हो गया। तो अचानक देखते कि उनका शरीर भी पूरा जो सांवला कलर का शरीर था, वो पूरा सुवर्ण कलर का हो गया, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का एकदम उन्हें कांति ले लिया। तो बोले क्या हो गया, कैसे हो गया। तो फिर अचानक से फिर से वो बोलते मैं ठीक हूँ, कुछ हुआ नहीं, और अचानक से बेहोश हो जाते हैं। कैसे तो उनको फिर घर में लेके आते हैं, तो उनके पिताजी बोलते शायद वो जो नदी है उसके पास एक इमली का पेड़ है, उसके ऊपर भूत पिशाच रहते हैं, शायद कोई भूत इसके अंदर घुस गया है। तो बोलते तांत्रिक को बुलाया जाए, फिर तांत्रिक को लेके आते हैं, फिर उसको कुछ वो जो चामर है उससे करके कुछ दुआ करके करके बहुत कुछ किया जाता है। फिर वो तांत्रिक बोलता है कि उनको कुछ भूत ने कुछ नहीं उसके अंदर गया है, उनके अंदर कुछ भूत वूत नहीं गया है, उनको बोलते हैं कुछ जो मतलब वात का प्रॉब्लम है, वात हो गया है शरीर में, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो उनको कुछ तो ऑयल बताते, वो ऑयल लगा दीजिए तो उससे ठीक हो जाएंगे। तो फिर उनको सुलाया जाता है, लेकिन वो अचानक से उनको जैसा किसी को शॉक देते तो ऐसा ऐसा उछलते हैं, तो बार बार ऐसे उछलने लगते हैं, जैसे उनको वो गौरांग महाप्रभु का जो दिखते हैं तो उछलने लगते हैं, लेकिन उनको सब पकड़ के रखते हैं। तो उनको समझता है कि मेरे वजह से मेरे माता पिता को बहुत तकलीफ हो रहा है, फिर भी वो उछलने लगते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गौरांगा गौरांगा करके चिल्लाने लगते हैं, उनको कुछ समझता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर कुछ समय बाद माता पिता परेशान हो जाते हैं, फिर कैसे तो थोड़ा सो जाते हैं जो नरोत्तम दास जो सो जाते हैं, फिर ऐसा ही समय जाता है, तो वो उनके मदर माता को पिता को बोलते हैं कि आप मुझे अगर खुश देखना चाहते हैं तो मुझे वृंदावन जाने दीजिए, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, उधर ही मैं खुश रह सकता हूँ। तो वो बोलते कि नहीं, अगर आप वृंदावन जाएंगे हम जहर खा लेंगे, तो आपको वृंदावन नहीं जाने देंगे। तो फिर पूरा गार्ड्स उनके वापस जो है सिपाही लगाए जाते हैं उनको कि बाहर नहीं जाना चाहिए किधर। तो फिर भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं, फिर एक दिन उनके सपने में वापस गौरांग महाप्रभु आते हैं और बोलते हैं कि आपको वृंदावन जाना है, और वहाँ जाके लोग जो लोकनाथ गोस्वामी हैं उनसे आपको दीक्षा लेना है, तो वो और फिर अदृश्य हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद उनको एक चिट्ठी आती है, जो उनके पिताजी है कृष्णानंद दत्त, उनको चिट्ठी आती है कि उनके वहाँ के जो नवाब है जिनके अंडर वो काम करते हैं, उन्होंने नरोत्तम दास के बारे में सुना है और वो उनको मिलना चाहते हैं। तो उनको लगता है इनको बाहर भेजना बहुत अच्छा नहीं है, नहीं भेजना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको अंडर वो काम करते हैं तो उनको भेजना ही पड़ता है। तो फिर बहुत सारे गार्ड्स के साथ उनको भेजा जाता है। तो नरोत्तम सोचते हैं कि अभी अच्छा मौका है मुझे यहाँ से निकलने का। फिर वो ऐसे जैसे जाते हैं बाहर, एक दो जगह पर रुकते हैं रात को, तो फिर एक दिन सब सोते रहते हैं तो वो चुपचाप निकल जाते हैं और भागते रहते हैं, और इतना कि उनको जस्ट भाग उनको पता नहीं चलता कि कितना स्पीड से भागते हैं। वो लोग लाइटनिंग स्पीड से भाग रहे थे, जो जो लाइट के स्पीड से उतना स्पीड से भाग रहे थे कि उनको समझ नहीं रहा था। इतना थक जाते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो घंटा सोते थे, रुकते थे किधर और भागते थे, सिर्फ भाग ही रहे थे। तो एक दिन फिर थक जाते बहुत और एक पेड़ के नीचे सो जाते, तो आँख खोलते तो देखते हैं कि जो गार्ड से भाग के आते सब गार्ड्स उनके आजू बाजू में खड़े हैं। तो बोलते कि आपके जो माता पिता है बहुत परेशान है, आप कृपया चलिए। तो वो बोल नरोत्तम दास बोलते कि आप मुझे लेके मत जाइए, क्योंकि वो बोलते कि अगर कोई पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है और जब वो पति मर जाता है तो उनके जो जो उसे चिता है उसके ऊपर जाने के लिए उसके जो यह रोकना चाहते हैं उनको कि आप मत जाइए, लेकिन पत्नी को विरह सहन नहीं होता, उसी प्रकार जो कृष्णा भक्ति का जो विरह है मैं उसमें जल रहा हूँ और मुझे वृंदावन जाने से आप मत रुकिए, अच्छा नहीं है। फिर वो अच्छे से जो गार्ड्स है उनको पूरा प्रवचन देते हैं, फिर गार्ड्स भी मान जाते हैं, बोलते ठीक है आप जाइए, और फिर वापस वो भागने लगते हैं। और भागते भागते एक जगह पे इतना थक जाते हुए बैठते हैं तो उधर एक वृद्ध ब्राह्मण आते हैं, और ब्राह्मण उनकी सुवर्ण कांधे रहते हैं और उनको एक मटका में दूध देते हैं और बोलते आप दूध पीजिए। तो इतने थके रहते कि मटका हाथ में लेके सो जाते हैं। तो फिर उनको सपने में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आते हैं और उनके छाती पे ऐसा हाथ रख के बोलते हैं कि नरोत्तम आप राजकुमार है, आपको जो इतना जो आप इतना थक गए हैं, ये जो थकान है ये आप कुछ टाइम समय के लिए है, लेकिन आप तुरंत जब उन्नान पहुँच जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो आपको जो मटका दिया है वो खुद चैतन्य महाप्रभु थे जो आपको देने के लिए आए थे, तो आप वो पीजिए, उससे आपका दूध पीने के बाद आपका पूरी थकान चली जाएगी। तो एकदम से उठते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता कि खुद महाप्रभु आए और मैं उनको पहचान नहीं पाया। फिर वो दूध पी लेते हैं मटके से, तो उनको फिर पूरा जो शरीर का जो उनका जो भी थकान है सब कुछ चले जाती है और फिर से वो जाने लगते हैं। और फिर वो मथुरा की तरफ जाते हैं और एक जगह पे पूछते हैं कि वो कौन सा शहर है, तो उनको कोई बताते हैं मथुरा है, तो उनको थैंक यू बोलते हैं, उनको बोलते हैं धन्यवाद आपने बताया, और वो कुछ बोलने जाते तब तक वो बहुत दूर तक चले गए होते, इतना भागते कि अभी मथुरा आ गया, इतना उनको खुशी होता है कि अभी मैं मथुरा के पास पहुँच गया। और जैसे मथुरा जाते हैं उधर पूरा दंडवत मार देते हैं और वो एकदम ऐसा विस्मित होकर देखते रहते हैं कि इधर ही भगवान की लीलाएं हुई थी, ये सब मुझे अभी इधर आने का जो मौका मिला है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो एकदम ये हो जाता है कि मैं कि मेरा सपना था, मेरा जीवन का सपना था मैं इधर आने का, तो वो बहुत अच्छा लगता है उनको। फिर वो उधर जो लोग रहते हैं उनको पूछते हैं कि अलग अलग विश्राम घाट किधर है, अलग अलग जगह के बारे में पूछते हैं। फिर वो एक जगह पर जाते हैं और फिर कुछ एक गीत गाते रहते हैं, तो एक ब्राह्मण रहता है वृद्ध ब्राह्मण, उनको देखता है कि बहुत ही अच्छे एक संत लग रहे हैं, उनके पास जाते घर जाके कुछ प्रसाद लेके आते हैं उनको खिलाते हैं, और जब नरोत्तम दास वो खाते हैं फिर उनसे बात करने लगते हैं, तो बताते हैं मैं कहाँ से आया, सब कुछ बताते हैं उनके बारे में। और वो पूछते कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कैसे है वृंदावन में कैसे है, तो वो एकदम जो रुद्ध जो ब्राह्मण है वो एकदम शांत हो जाते हैं, वो बोलते कि कुछ समय के बाद बोलते हैं कि नहीं अभी वो नहीं रहे। तो जैसे वो बोलते नहीं रहे तो वो एकदम रोने लगते कि मेरा इधर आके फ़ायदा क्या, मैं तो मर मुझे तो मर जाना चाहिए, क्योंकि उनका दर्शन के लिए मैं इतना दूर आया और अभी मुझे कुछ नहीं, वो उनका दर्शन नहीं होगा। तभी उनको ब्राह्मण बोलते कि बाकी भी है, जू गोस्वामी है और बाकी भूगर्व गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी बाकी बहुत है, आप उनसे मिलिए। और फिर वो बहुत रोते हैं और उनको नींद नहीं आती, तो अचानक देखते हैं कि वापस सब गोस्वामी उनको दिख रहे हैं, सब आके उनसे मिलते हैं, और ये जो दृश्य है वो जो वृद्ध ब्राह्मण है वो भी देखते हैं, तो उनको भी बहुत ऐसा लगता है कि कौन है भक्त है कि उनको मिलने के लिए खुद ये सब गोस्वामी प्रकट हो गए। और फिर वो वृंदावन की तरफ जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं और जाके गोविंद जो टेम्पल में जाते हैं और उधर जाके गिर जाते हैं, तो फिर जैसे उनको मिलने के लिए कुछ भक्त आते हैं तो वो देखते, जीव गोस्वामी उनको मिलने के लिए आते, तो आप नरोत्तम है क्या? बोलते हाँ। तो बोले आपको कैसे पता? तो वो बोलते हम सब आपका इंतजार कर रहे थे, महाप्रभु ने बताया था आप आने वाले हैं। तो बोले आप कौन है? तो बोले जीव गोस्वामी। तो जैसे सब देखते जीव गोस्वामी को देख के वापस वो बेहोश हो जाते हैं, फिर वापस उठते हैं, उनको पानी डाल के उठाया जाता है, फिर वो वृंदावन में रहते हैं, फिर बाकी लोकनाथ गोस्वामी से मिलते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, महाप्रभु ने मुझे बोला कि आपसे मुझे दीक्षा लेना है। लेकिन तब ये लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि मैं खुद भक्त नहीं हूँ तो मैं आपकी कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। तो फिर वो बहुत निराश हो जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, और बाद में निराश हो जाते हैं जीव गोस्वामी को पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, तो बोले कि आप उनको कुछ सेवा कीजिए। तो तब लोकनाथ गोस्वामी बोले तो बोलते हैं कि आप पहले 1 साल कुछ जीव गोस्वामी के साथ पढ़ाई की उधर है, उनके अंडर कुछ पढ़िए, शास्त्रा पढ़िए, अध्ययन कीजिए, जप कीजिए, उसके बाद देखेंगे। तो फिर वो 1 साल हो जाता है, उसके बाद वो वापस लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते हैं, तो उनको मना करते हैं। तो बोलते हैं अभी मैं क्या सेवा करूँ इनकी, बोले इतने सिंपल है कि उनका कुछ सेवा नहीं कर सकते, एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, कभी खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाते हैं, ऐसा उनका स्थिति है, मैं क्या करूँ? तो वो फिर सोचते कि उनके दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के जाते हैं, फिर और फिर जो लोकनाथ गोस्वामी जब प्रातःकालीन विधि करने के लिए जो जगह भी जाते हैं उधर जाके वो साफ सफाई करते हैं, सब मिट्टी विट्टी अच्छे से क्लीन करते हैं, और फिर लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं रोज कि इधर कोई तो क्लीन कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो एक दिन वो जब नरोत्तम दास जाते हैं और सफाई करते रहते हैं, तो अचानक से वो आवाज़ देते कि उधर कौन है? तो एकदम से वो ये हो जाते नरोत्तम दास जी, डर जाते कि अभी इनको पता चल गया तो अगर मुझे शायद डांटेंगे। तो फिर वो उनको बोलते कि नहीं आप राजकुमार हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए आपको, इतना छोटा सेवा नहीं करना चाहिए आपको। तो फिर उनका जो सेवा भाव देख के उनका जो हृदय है वो पिघल जाता है, और उनको फिर वो दीक्षा देने के तैयार हो जाते हैं। फिर उनको दीक्षा होता है, फिर दीक्षा होने के बाद वो वृंदावन में रहते हैं, उसके बाद श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित इनके साथ जीव गोस्वामी के जो उनके इस उनके अंडर शास्त्रों की पढ़ाई करते हैं, और कुछ साल ऐसे बीतते हैं। फिर एक दिन जीव गोस्वामी उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि अभी हमें एक कार्तिक आने वाला है, तो हम एक कार्तिक की एकादशी में हम महोत्सव करेंगे, सब वृंदावनवासियों को बुलाएंगे, एक महोत्सव करेंगे, सबको बुलाते हैं उस दिन एकादशी के दिन, और उनका कीर्तन सब कुछ कीर्तन चालू रहता है, फिर कथा होता है, और पूरा कथा का ही उनका फिस्टिंग रहता है उस दिन एकादशी रहता है, इसलिए पूरा कृष्ण कथा मतलब उनका फिस्टिंग। फिर दूसरे दिन होता है, फिर सब उठते हैं और सब जगह साफ करके वापस फिर बड़ा फिस्ट बनाया जाता है, सबको खिलाया जाता है, और फिर जीव गोस्वामी बोलते हैं कि सबको बुलाते हैं कि अभी मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी और बाकी गोस्वामी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है शास्त्र, तो उनका भी हमें महाप्रभु के जो ये है उनका टीचिंग्स है उनका हमें अलग अलग जगह पे जाके प्रचार करना है, और मेनली बंगाल में। तो अभी जो नरोत्तम दास ठाकुर है, श्रीनिवास आचार्य है और श्यामानंद प्रभु है पंडित है, वो तीनों लेके जाएंगे और उसका उधर उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो फिर उनको तो सबको धक्का लगता है कि हमको वृंदावन तीनों को कि वृंदावन से हमको जाना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि महाप्रभु का वो आज्ञा रहती है और उनके गुरु भी उनको आज्ञा देते हैं। तो फिर वो निकलते हैं, और फिर जिस दिन जाने का रहता है उस दिन एक बड़ा जो बैलगाड़ी है उसको अच्छे से बनाया बनाया जाता है गोविंद देव टेम्पल के बाजू में, उधर सामने लाते हैं, और फिर बहुत सारे बुक्स लाए जाते हैं, और फिर जो गोस्वामी एक एक बुक उठाते हैं, उनका नाम लेते हैं, सर पे लगाते रखते हैं, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, ऐसा बुक का नाम लेते हैं और एक एक को ट्रंक पे लगते जाते हैं, और फिर सब बुक्स जब रख देते हैं उसको अच्छे से कवर करते हैं, और फिर उनका वो निकलते हैं। फिर उनके साथ कुछ गार्ड्स भी जाते हैं। तो कुछ महीने के बाद वो बंगाल के जो ये है बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं बिना कुछ तकलीफ के, वो पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वो उसके बॉर्डर पे पहुँचते हैं तो एक जगह पे फिर वो सो जाते हैं अचानक, मतलब रात को, उस दिन गार्ड भी सो जाते हैं और सब चोरी हो जाता है उनका जो बुक्स है, सुबह उठते देखते हैं तो सब बुक्स चोरी हो जाता है। उनको समझता नहीं कि क्या हो गया, बुक्स किधर चला गया, फिर सब ढूंढते ही मिलता नहीं है। तो फिर श्रीनिवास आचार्य बोलते कि मैं इधर बुक्स को ढूंढूंगा, आप जाइए दो जो नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद पंडित, आप खेतुरी वापस जाइए उधर प्रचार कीजिए, और श्यामानंद पंडित को बोलते हैं कि आप बाद में उड़ीसा जाइए उधर प्रचार कीजिए, मैं बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा जब मिल जाएगा तो, क्योंकि भगवान का कुछ इसमें कुछ रहेगा कि इतना समय, इतना 2 महीना हम आए कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी कैसे हो सकता है, तो भगवान के उसके पीछे कुछ तो रहेगा, उनका कुछ मिशन रहेगा। फिर वो जाते हैं वापस खेतुरी जाते हैं, तो जब से खेतुरी पहुँचते हैं तो उधर एक ब्राह्मण मिलते हैं नरोत्तम दास जी को, जैसे वो नदी से उतरते हैं बोट में से, तो वो बोलते कि आप गौड़िया वैष्णव है क्या, तो बोलते हाँ, तो बोलते कि गौड़िया वैष्णव जो आज अभी भी इधर आते हैं तो हमारे जो राजा रानी है उनका वो स्वागत करते हैं, उनको अच्छे से ख्याल किया जाता है, तो बोलते ऐसा क्यों, तो बोलते क्योंकि उनका जो पुत्र था नरोत्तम वो चैतन्य महाप्रभु जो गौड़िया वैष्णव ये संप्रदाय उसमें उन्हें जाके वो सम्मिलित हो गए हैं, तो जब भी वो कोई गौड़िया वैष्णव आते हैं तो उनको अच्छे से खातिरदारी किया जाता है, तो उनको लगता है कि मैं मेरे बेटे को ही सेवा कर रही हूँ, तो वो बोलते कि उन लेकिन उन वो ब्राह्मण बोलते कि वो एक्चुअली आपके जो उनके जो माता पिता है इतने अच्छे हैं तो वो कैसे छोड़ के जा सकता है बेटा इतने अच्छे माता पिता को, तो तभी वो बोलते कि हाँ वो जो बेटा है जो इतना निर्दयी है वो मैं ही हूँ, तो जैसे वो देखते तो बोलते नारू नारू करके, अरे हाँ ये तो आप है, तो अब वापस आ गए, तो जाके सीधा दौड़ के जाते हैं पूरा गांव में एकदम ढिंढोरा पीटना लगते हैं कि नरोत्तम इस आ गए नरोत्तम आ गए करके, सब लोग आते हैं उनके माता पिता आते हैं, फिर वो उनके महल में जाते हैं और सब दौड़ने लगते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे आते हैं, तो देखते हैं कि जैसे उनके पास जाते हैं रुक जाते हैं, तो वो देखते हैं कि अभी अपना नरोत्तम नहीं है, अभी ये बहुत बड़ा वैरागी बन गया है, तो एकदम रुक जाते हैं, तभी नरोत्तम आगे जाके उनका पैर छूते हैं, फिर उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप अभी घर में रहिए, तो वो बोलते हैं कि अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं घर में रहूँ तो मैं वापस चला जाऊँगा, मैं वैसे तो इधर रहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दिया है इसलिए मैं इधर आया हूँ, मैं जो अपना चंडी मंडप है जो वो मंडप में जो मंदिर है अपने गाँव का वो उसमें रहूँगा और आपको मैं रोज़ प्रणाम करने आया करूँगा, तो बोलते ठीक है आपको जैसा इच्छा है वो कीजिए, लेकिन आप हमारे सामने बहुत अच्छा लग रहा है, फिर उस बोलते कि आज हम वापस रात को हम प्रोग्राम रखेंगे, तो आते हैं रात को फिर कीर्तन होता है सब लोग, फिर 12 बजे तक कीर्तन होता है, और फिर अभी बोलते कि नरोत्तम दास जो है उस जब कीर्तन होता है प्रवचन होता है सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो बोलते अभी आप जाइए वापस आपको उठना है सुबह, तो इस तरह फिर वो उधर प्रचार कार्य चालू करते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद जो उनके साथ श्यामानंद पंडित आए रहते हैं वो बोलते हैं कि अभी मुझे भी उड़ीसा जाना चाहिए, तो फिर वो उड़ीसा चले जाते हैं, और फिर जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो बोलते हैं उनके माता पिता को कि अभी मुझे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है उनका लीला स्थली है उनको देखना है, तो मैं एक बार मैं जाके आऊँगा, तो आपका मुझे आज्ञा चाहिए, तो बोलते कि आप जाइए लेकिन जल्दी आ जाइए, तो बोलते मैं जाके आज जल्दी आ जाऊँगा, तो जाते हैं पहले जो है नवद्वीप जाते हैं, फिर नवद्वीप जाते हैं उधर अलग अलग जो लीला स्थल है भगवान की उनका दर्शन करते हैं, उनके जब उनके घर पे जाते हैं जो जहाँ चैतन्य महापुरुष रहते थे, जैसे घर पे जाते हैं तो उनको एकदम भाव विभोर हो जाते हैं दरवाजे में, तो उनको लगता है इधर ही निमाए खेला करते थे जो बच्चे थे सब कुछ, उनको ऐसा सब याद आता है जो उन्होंने सुना रहता है सब कुछ, तभी उनके कंधे पे कोई हाथ रखता है तो वो रहते हैं शुक्लम्बर ब्रह्मचारी, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु के संग किया रहता है, तो उनके पूरा पैर पकड़ लेते हैं नरोत्तम दास ठाकुर उनका पैर पकड़ लेते हैं, और उसके बाद वो अंदर जाते हैं, और फिर जो दीवार है घर की दीवार है उस पर माथा टेकने लगते हैं, वो बोलते हैं कि ये दीवार ने सब कुछ देखा हुआ है जो चैतन्य महाप्रभु इधर पूरा खेले है कुछ सब कुछ उनका लीला है देखा हुआ है, तो कितना भाग्यशाली है ये दीवार, और फिर वो जमीन का पूरा हाथ ऐसा करके अपने ऊपर पूरा उसका जो धूल मिट्टी सब लगाने लगते हैं कि ये कितना भाग्यशाली है जमीन कितना भाग्यशाली है, फिर उधर अंदर देखते तो एक ईशान जो चैतन्य महाप्रभु की जो सच्ची माता है उनकी मदर उनका जो पर्सनल असिस्टेंट रहता है वो मिलते हैं, वो बूढ़े हुए रहते हैं, तो उनको बताते हैं कि नरोत्तम है, तो वो भी एकदम खुश होते हैं कि वो बोलते हैं उनको कि मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए रुका था, नहीं तो अब तक मैं तो मर जाता था, अब तक तो मैं इस शरीर छोड़ दिया होता, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अलग अलग स्थान का भ्रमण करते हैं, अलग अलग भक्तों से मिलते हैं, फिर वो वहाँ से जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी जाते जाते रास्ते में जो भी अलग अलग महाप्रभु के जो भक्त है उनसे मिलते हैं। फिर जैसे जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जब वो जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो अचानक से जैसे महाप्रभु पहली बार जब जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, उस तरह वो भी बेहोश हो जाते हैं और सब लोग उनके आजू बाजू में आते हैं। फिर वो कुछ समय बाद उनको जब होश आता है तो फिर वो गरुड़ स्तंभ के पास जाते हैं जहाँ से महाप्रभु दर्शन किया करते थे जगन्नाथ जी का, और उसको पकड़ के ऐसा रोने लगते हैं और इतना रोते हैं कि नीचे पूरा ऐसा एक पूरा ऐसा कुंड भर जाता है, ऐसा इतना रोने लगते हैं। तो सब लोग उनको देखते रहते हैं क्या हुआ, और पूरा दिन भर 3-4 आरती होने तक वो स्तंभ को पकड़ के खड़े रहते हैं। फिर जो महाप्रभु के कोई भक्त है उनको फिर लेके जाते हैं, बाकी भक्तों से मिलाते हैं, वो बोलते हैं कि सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि महाप्रभु ने बताया था कि आप आने वाले हैं, तो इसलिए सब आपका ये करे। फिर वो सबसे मिलते हैं, फिर वो उसके बाद एक चक्र जाते हैं, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आके उनको सब जगह दिखाते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि अचानक अदृश्य कैसे हो गए, तो नित्यानंद प्रभु फिर बलराम जी के रूप में आते हैं और उनको दर्शन देते हैं कि मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता लेकिन फिर भी आपका जो अभी मिशन है वो अच्छे से आगे, जो महाप्रभु मिशन है वो आपको आगे बढ़ाना है। फिर वहाँ से फिर वो वापस खेतुरी आ जाते हैं, और जब वो खेतुरी वापस आते हैं तो वो खेतुरी में उनको उनके जो गुरुदेव है लोकनाथ गोस्वामी उनका एक पत्र आता है कि आप लोगों को जो डीटी वर्शिप है, जो पूजा है भगवान की, विग्रह पूजा, वो अभी चालू करना चाहिए, तो आप उधर विग्रह की स्थापना कीजिए खेतुरी में। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि विग्रह की स्थापना भी करेंगे और जो महाप्रभु का जो जन्मदिन है, उनका आयुर्भाव दिन है, उसको भी बहुत कितने साल हो गए कि बड़े तरीके से उनको मनाया नहीं गया, तो वो भी हम मनाएंगे। तो सब महाप्रभु के जो अलग अलग पार्षद हैं, जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है उनको, और जो भी बड़े बड़े पार्षद है, भक्त है जो महापुरुष के विरह में है, वो जो सबको मिल के आए हैं उनको सबको पत्र भेजा जाता है कि ये दिन में हम ये करने वाले हैं, महापुरुष के आयुर्भाव दिवस मनाने वाले हैं और उस दिन विग्रह की स्थापना भी करने वाले हैं। तो फिर सबको बुलाया जाता है, फिर जब दिन निश्चित होता है फिर बहुत अलग अलग उत्सव की तैयारियाँ होती है, मंदिर बनाना चालू हो जाता है, ड्यूटीज का बनाना चालू हो जाता है, लेकिन उसमें जो महापुरुष की ड्यूटी है, विग्रह है, वो अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं। तो नरोत्तम दास जी को लगता है कि अच्छा नहीं है, तो तभी उस रात को महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि मैं इस तरह नहीं प्रकट होना चाहता, मेरा एक गोल्डन जो विग्रह है सुनहरा वो एक जगह पे रखा हुआ है। तो आप वो जाते हैं कि एक व्यापारी का नाम बताते हैं और उनके गोडाउन में रखा हुआ है ऐसा बताते हैं, तो उधर जाते हैं लेकिन वो गोडाउन के अंदर बहुत सारे सर्प सांप रहते हैं, सर्प रहते हैं, तो उनको जाने के लिए वो लोग मना करते हैं आप इसके अंदर नहीं जा सकते। तो वो बोलते कि मैंने गोडाउन को कितने सालों से बंद करके रखा है क्योंकि वो सर्प बाहर नहीं निकल रहे, तो फिर भी वो नरोत्तम दास जी घुस जाते हैं अंदर और पूरे सर्प बाहर आ जाते हैं, सब लोग विस्मित हो जाते हैं। फिर वो महाप्रभु का ड्यूटी लेके आते हैं, सब लोग खुश होते हैं। फिर जब स्थापना विग्रह के जब स्थापना का दिन आता है उस दिन सब अलग अलग जो भक्त हैं महाप्रभु के आने लगते हैं, फिर बड़ा फेस्टिवल होता है, जानवा माता आती है, सब सब लोग आते हैं और विग्रह की स्थापना होती है और अभिषेक बहुत कुछ होता है। फिर दूसरे दिन जब नरोत्तम दास जी है उनका कीर्तन होता है, तो उनके जो अलग अलग जो वाद्य बजाने वाले जो है, करताल, मृदंग, अलग अलग वो सब आते हैं, फिर वो नरोत्तम दास जी गाना चालू करते हैं। और जैसे वो गाना चालू करते हैं तो और जो उनका संगीत रहता है यानी जो तो कीर्तन का जो वो एकदम नया रहता है, वो किसने आज तक सुना नहीं रहता है, उस तरीके से वो गाते हैं, सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं, सब लोग रोने लगते हैं। और अचानक देखते हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और उनके सब पार्षद कीर्तन में प्रकट हो गए हैं, सब लोग देखने लगते हैं, जानवा माता देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, तो अद्वैत आचार्य के जो बेटे आते हैं वो देखते हैं कि उनके पिताजी आए हैं, सब लोग बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, सब लोग एकदम डांस एकदम एक्सटेंशन में आते हैं और पूरा भाव विभोर होके नृत्य करने लगते हैं, और सबको लगता है कि सब कीर्तन ऐसा ही चलता रहे, कभी बंद ना हो, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से सब अदृश्य हो जाते हैं और सब लोग वापस जो है सब लोग रोने लगते हैं, पूरा इधर कीचड़ हो जाता है, इतना रोने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर जानवा माता बाकी जो भक्त है वो नरोत्तम दास जी को बोलते हैं कि आपके वजह से, आपकी कीर्तन के वजह से, आपकी जो शुद्ध भक्ति है उसके वजह से हम वापस इनका दर्शन कर पाए, जो महाप्रभु और उनके पार्षद लोगों का, तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इस प्रकार वो उनका जो है बहुत जो उनका जो खेतुरी, उसको फेस्टिवल बोलते हैं, खेतुरी का बड़ा उत्सव, वो बहुत फेम प्रख्यात हो जाता है, सब लोगों को पता चलता है इतना बड़ा महोत्सव हो गया करके। फिर उसके बाद सब जो लोग हैं सब चले जाते हैं अपने अपने जगह पे, जहाँ से आए चले जाते हैं। और फिर जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो फिर वापस अपना जो प्रचार का कार्य चालू करते हैं, प्रचार करता है, उनके बहुत सारे शिष्य बनते हैं, उसमें से एक हरिराम और रामकृष्ण करके एक शिष्य रहते हैं। उसके बाद वो बहुत बड़े धनी व्यक्ति के बेटे रहते हैं, लेकिन उनको भी वो शिष्य बनाते हैं। उसके बाद एक गंगा नारायण चक्रवर्ती बहुत बड़े पंडित रहते हैं, लेकिन वो पहले नरोत्तम दास जो है उनको मानते नहीं है, बोलते हैं कि शूद्र है हम इनका, लेकिन उनका जब विद्वत्ता देख के, उनका सब देख के, उनको वो फिर उनको उनको अपना गुरु बना लेते हैं और फिर प्रचार करने लगते हैं। लेकिन ऐसे फिर भी ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग रहते हैं कि जो उनको नहीं मानते नरोत्तम दास गुरु, वो बोलते कि ये तो शूद्र है हम इनको क्यों मानेंगे। तो फिर प्रचार का कार्य उनका चलता है। फिर धीरे धीरे नरोत्तम दास जी बूढ़े होने लगते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी मुझे, उनके शिष्यों को बोलते हैं कि भी आप जो विग्रह की सेवा है आप कीजिए, अभी मैं थोड़ा भजन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कोई अच्छा स्थान बताइए। जो वो गंगा नारायण चक्रवर्ती और हरिराम और रामकृष्ण को बोलते हैं, तो बोलते कि ठीक है आप हमारे साथ, बोलते कि गंभीला करके एक जगह है उधर जाएंगे। तो उधर जाते हैं, फिर उधर जाके गंगा में स्नान करते हैं, और जैसे गंगा स्नान करके आते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर जो रेत पे लेट जाते हैं, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, उठते नहीं हैं, तो सब उतना पूरा जो सांस बंद हो जाती है, सब कुछ ऐसा सबको लगता है क्या सब। और जब जो गंगा नारायण चक्रवर्ती है उनको लगता है कि हम इनको लेके आए हैं हमारे गुरु को, और अभी इनको ऐसा हो गया, रोने लगते हैं। तभी वो कुछ ब्राह्मण आते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए ये तो क्षुद्र है, आप इनसे दीक्षा लिया, देखिए अभी कैसे इनका गति हो गया। तो और बहुत कुछ बड़ा भला ऐसा कुछ तो बुरा बोलते हैं उनके बारे में। तो जो गंगा चक्रवर्ती है वो उनके नरोत्तम दास जी के पैर पकड़ के रोने लगते हैं कि देखिए आपके बारे में कैसा बोल रहे हैं। तो अचानक से नरोत्तम दास ठाकुर है उनका सांस चालू हो जाती है, और उनका शरीर जो है वो स्वर्ण कलर का होने लगता है, और उनके शरीर के ऊपर एक जो सुवर्ण कलर का जो ब्राह्मण थ्रेड है वो अपीयर होने लगता है, और वो फिर उठ के बैठ जाते हैं। तो वो देख के सब एकदम खुश हो जाते हैं, और इतना खुश हो जाते हैं, और फिर जो ब्राह्मण है उनको भी लगता है कि हमने बहुत अपराध किया है, वो उनकी माफ़ी मांगते हैं। फिर वो उनको ब्राह्मण को बोलते हैं कि आप आइए खेतुरी में आइए, और गंगा नारायण चक्रवर्ती और मेरे जो शिष्य हैं उनके साथ आप रह के शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। तो वो मान लेते हैं, फिर वो वापस खेतुरी जाते हैं, और कुछ दिन खेतुरी में रहने के बाद वो बोलते हैं कि वापस मुझे गंभीला जाना है। तो उनके शिष्य बोलते कि आप अभी बहुत वृद्ध हो गए हैं, अभी आपको नहीं जाना चाहिए इतना दूर। तो बोलते नहीं मुझे जाना है। तो फिर उनके शिष्य उनको कुछ बोल नहीं पाते। फिर वो जो विग्रह है विग्रह के दर्शन करते हैं, उनसे बहुत तीव्रता से प्रार्थना करते हैं। तभी गंगानंद चक्रवर्ती वो उनको देखते हैं कि ये कुछ भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये उनके जो धरती के ऊपर जो लीला है शायद उनको समाप्त करना है, लेकिन वो पूछ भी नहीं पाते क्योंकि वो उनके गुरु है, तो जैसा बोला है गुरु ने वैसा करना पड़ता है। तो उनको फिर लेके गंभीला जाते हैं, उधर जाते हैं, वो बोलते हैं अभी मुझे स्नान करना है। तो स्नान करना है तो फिर वापस गंगा नदी में जाते हैं, और जाए और गंगा नदी में पूरा आधा डूब जाते हैं, और फिर गंगा नारायण चक्रवर्ती और जो रामकृष्ण उनके जो शिष्य हैं उनको बोलते हैं कि आप मेरे शरीर का मसाज कीजिए। तो धीरे धीरे उनका मसाज करने लगते हैं, और कीर्तन सब लोग करने लगते हैं, जोर से कीर्तन करने लगते हैं, बहुत कीर्तन में सब भाव विभोर हो जाते हैं। और अचानक से जो उनका शरीर है और सुवर्ण कलर का होने लगता है, बहुत सुवर्ण कलर का, सबको एकदम विस्मित हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। और धीरे धीरे देखते हैं कि किस तरह उनका जो शरीर है, और बाद में देखते हैं कि उनके शरीर के आजू बाजू में एक ऐसा दूध के कलर, ऐसा दूध ऐसा बह रहा है। तो अचानक से जो गंगा नारायण चक्रवर्ती है वो देखते हैं कि हम जो मसाज कर रहे हैं उनको, तो उनका जो शरीर है वो शरीर पिघल रहा है, दूध की तरह हो रहा है शरीर, और पानी में बह रहा है, लेकिन वो उनके उनको लगता है कि मैं गुरु को उनको बोलूँ कि पानी के बाहर निकलिए ऐसा, लेकिन वो बोलते हैं कि गुरु को कैसे बोला, बोल नहीं सकते, उनकी आज्ञा है। तो वो मसाज करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका शरीर जो है वो पिघलने लगता है, पूरा ऐसा दूध की तरह पानी में बहने लगता है। तो अचानक से कोई एक मटका देता है उनको और वो मटके में वो थोड़ा उसमें से जो पानी में उनके जो दूध उनके शरीर का जो हुआ है उनको भर लेते हैं और अपनी छाती से लगा के रखते हैं, और धीरे धीरे करके वो पूरा गंगा नदी में समा जाते हैं, और इस तरह उनका वो इनका तिरोवा हो जाता है कि वो शरीर इस जगत से चले जाते हैं। फिर सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, फिर जो उनके जो मटका है फिर उनके उनसे समाधि बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो नरोत्तमदास ठाकुर जी है वो उन्होंने अपने भजनों के द्वारा जो वेद बहुत ऐसा इस तरह से प्रचार, मतलब अभी हम उनके भजन देखते हैं तो बहुत जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि वो पूरा वेदा का जो वेदाज है उनका एक सार है पूरा, उसने भजन में पूरा डाला है। तो हमें इस जो आज के दिन उन्हें हम उसे प्रार्थना करेंगे कि हम भी भगवान के भक्ति बारे में कुछ जान पाए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।